नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लायन भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। यूक्रेन ने अगले सप्ताह की शुरुआत में रूस के साथ अतिरिक्त बैठकें होने का संकेत दिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने वकील दंपति जैनब मजारी और हादी अली चत्था को सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए 17 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। और आईसीसी ने T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। अरब समाचार विस्तार से। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लायन भारत की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ की अगले चरण की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। मंत्रालय के अनुसार यूरोपीय संघ के साथ भारत का जुड़ाव यूरोप पर उसके रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। ये भारत EU शिखर सम्मेलन और जारी मुक्त व्यापार समझौते FTA के अनुरूप है। वर्ष 2024 तक यूरोपीय संघ में 931,000 से अधिक भारतीय रह रहे थे, जिनमें 16,000 से ज्यादा ब्लू कार्ड शामिल हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं की ये यात्रा भारत EU संबंधों को सरकार की वैश्विक और यूरोपीय नीति का एक प्रमुख स्तंभ बनाने के इरादे को दर्शाती है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
यूक्रेन ने संकेत दिया है कि अबू धाबी में संपन्न हुई रचनात्मक त्रिपक्षीय वार्ता के बाद अगले सप्ताह के शुरू में ही रूस के साथ अतिरिक्त बैठकें हो सकती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में कल समाप्त हुई इन वार्ताओं में फरवरी 2022 के बाद पहली बार अमरीका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
यह चर्चा युद्ध समाप्त करने के संभावित मापदंडों पर केंद्रित रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट में कहा कि वे युद्ध समाप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में अमरीकी निगरानी और देखरेख की आवश्यकता की समझ की सराहना करते हैं। अमरीकी पक्ष ने संघर्ष की समाप्ति की शर्तों को औपचारिक रूप से निर्धारित करने के संभावित प्रारूपों के साथ साथ इसे व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थितियों पर चर्चा की। सैन्य प्रतिनिधियों ने वार्ता के अगले दौर में उठाए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि आगे बढ़ने की तत्परता होती है और यूक्रेन तैयार रहता है तो अगली बैठकें अगले ही सप्ताह हो सकती है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात एक प्रमुख कूटनीतिक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उभरा है। यूक्रेन संकट में उसके मध्यस्थता प्रयास पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर एक मानवीय मिशन को अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य संघर्ष से ऊपर जीवन को प्राथमिकता देना और विनाश के बीच आशा के पुल बनाना है। विश्व दर्पण के लिए दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और पश्चिम एशिया के सलाहकार जेरेड कुशनर ने कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उनकी सरकार से गजा में दूसरे चरण के युद्ध विराम में आगे बढ़ने का आग्रह किया। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि दूत गजा में अंतिम बंधक के अवशेषों की बरामदगी और क्षेत्र से सेना हटाने के लिए अगले कदमों पर नेतन्याहू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका ट्रंप की मध्यस्थता से हुए समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, लेकिन नेतन्याहू पर हमास द्वारा बंधक के अवशेषों को लौटाए जाने का इंतजार करने का दबाव है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसराइल के रफा चौकी को खोलने पर चर्चा की संभावना है। अमेरिका में आव्रजन एजेंटों ने कल अमेरिकी नागरिक एलेक्स जेफरी प्रीटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये इस महीने की ऐसी दूसरी घटना है जिसके विरोध में स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन किया और घटना की निंदा की। 37 वर्षीय एलेक्स जेफरी प्रीटी ICU में भर्ती थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन संबंधी सख्ती से नाराज थे। उन्होंने इस महीने के शुरुआत में अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा रेनी गुट की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करेगा। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मेरा भारत मेरा वोट है। इसका नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक।
ये दिन हर साल भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन का उद्देश्य मतदाताओं के महत्व को रेखांकित करना, चुनावी जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इसके अतिरिक्त ECI राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मतदाताओं, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इन गतिविधियों में राष्ट्रीय निर्वाचन पुरस्कार समारोह शामिल है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्रों को सम्मानित किया जाएगा और राष्ट्रपति की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ मतदाता जागरूकता अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहन देने और सुलभ चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी के योगदान को मान्यता देता है। पाकिस्तान की एक अदालत ने कल वकील दंपति जैनब मजारी और हादी अली चत्था को 17 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को राज्य और उसकी सुरक्षा के खिलाफ देखते हुए अधिकारियों ने इस दंपति को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश अफजल माजोका ने कहा है कि मंजारी के ट्वीट प्रतिबंधित गुटों के उद्देश्य का समर्थन करते थे। मानवाधिकार संगठनों ने उनकी रिहाई की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले चुनावी गठबंधन में कल एक नई पार्टी शामिल हो गई। बांग्लादेश लेबर पार्टी के गठबंधन में शामिल होने से गठबंधन में दलों की संख्या 11 हो गई है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी देश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। इस बीच बांग्लादेश का राष्ट्रीय चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी प्रमुख प्रतिद्वंदी ताकतों के रूप में उभर रहे हैं। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले कर रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को निलंबित कर लोकतंत्र को कमजोर किया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले आवामी लीग पर रोक लगा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने एक पत्र के माध्यम से सदस्य बोर्डों को इस निर्णय की जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
श्री संजोग गुप्ता ने बताया कि भारत से बाहर अपने निर्धारित मैच खेलने की बांग्लादेश की मांग ICC की नीति के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड को शामिल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस पत्र की एक प्रति ICC बोर्ड के सदस्य और BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम को भी भेजी गई है। श्री गुप्ता ने क्रिकेट स्कॉटलैंड को अलग से पत्र लिखकर भारत और श्रीलंका में होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने का निमंत्रण दिया। इससे पहले ICC ने बांग्लादेश से भारत में मैच खेलने के अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा था। ICC ने कहा है कि वह विश्व कप प्रतियोगिता की पवित्रता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। स्कॉटलैंड अब टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ग्रुप सी में होगा और उसका 7 फरवरी को वेस्टइंडीज से, 9 फरवरी को इटली से और 14 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में स्कॉटलैंड और नेपाल आमने सामने होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का तीसरा मैच आज शाम 7 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। यूक्रेन ने अगले सप्ताह की शुरुआत में रूस के साथ अतिरिक्त बैठकें होने का संकेत दिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने वकील दंपति जैनब मजारी और हादी अली चत्था को सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए 17 वर्ष कैद की सजा सुनाई। और ICC ने T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।